ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। शोर शराबा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता उनके आचरण को देख रही है।
मैं पुनः कहना चाहता हूँ, सदन में तख्तियाँ लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच ही पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र में माल ढुलाई विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में 16 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लोकसभा में आज ये जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडर से युक्त एक मेडिकल बॉक्स उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत 98% से अधिक मतदाताओं को शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार 15 लाख से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं को अगले महीने की 1 तारीख को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे में शामिल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोरई स्वामी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
Prime Minister's consistently held the view that we must build ties with traditional and important partners. Making a short but really focused trip suggests to us that the Prime Minister places great emphasis on getting this relationship, not just to maintain it at its current trajectory, but to lift it to its next level.
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थापित प्रोटोकॉल और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार पीड़ितों की पहचान की है। इस दुर्घटना पर ब्रिटेन के एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सभी पार्थिव शरीरों को उचित सम्मान के साथ रखा गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के मात्र 1.5% से 2025 में 20% तक की इस छलांग से 1,36,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने आज बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि केवल 5 फुट से ऊंची गणेश प्रतिमाओं को ही प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 5 फुट से कम ऊंची सभी मूर्तियों को कृत्रिम झीलों में विसर्जित करना होगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफोर्ड में भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।